और एक है इबादत को अच्छी तरह करना। दोनों बातों में बड़ा फ़र्क है। उमूमी तौर पे हम इबादत तो करते हैं बस, जैसे मजदूरी करने वाला मजदूर जैसे तैसे करके भागने की सोचता है, हम भी इसी तरह करते हैं। ये ज़ौक़ कैसे मिलेगा? किसी अहले ज़ौक़ की सोहबत से मिलता है कि अल्लाह का नाम कैसे मोहब्बत से लेते हैं, अल्लाह ताला को कैसे याद करते हैं। सजदा और रुकू हम लोग भी करते हैं, औलिया अल्लाह भी करते हैं। फ़र्क है, हम लोग नमाज पढ़ते हैं जान छुड़ाने वाली, यानी सजदे से उठे भी नहीं कि बैठे भी नहीं, फिर चले गए दोबारा जल्दी में। क्योंकि जब हम नमाज़ पढ़ने लगते हैं उस वक्त हमें पूरी दुनिया के काम याद आ जाते हैं, और हम चाहते हैं कि नमाज को जल्दी से टरखा के जल्दी जल्दी इस काम को निमटाएं तो आगे काम में पहुँचें। ये नहीं है मेरे भाई, असल में हम पैदा तो इसीलिए हुए थे, अमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियाबुदून, कि ये वही हसर के मानी है जो अरबी में अक्सर जो ममा, हमने नहीं पैदा किया जन्नात को और इंसान को, मगर किस लिए पैदा किया? सिर्फ अपनी इबादत यानी अपनी मारिफत के लिए पैदा किया। लियाबुदून मानी में लियारिफून के, तो अपनी मारिफत के लिए पैदा किया। तो इबादत मकसूद है हमारी हयात का। मकसूद में हम पूरे दिन में ज़रा देखें, सुबह से शाम तक 6-8 घंटे सोने के हटा दें, 24 घंटे में से 16-18 घंटे रह गए, 17 घंटे रख लें, 7 घंटे एक सेहतमंद आदमी सोता है, कोई पहले सोता है कोई ज़्यादा देर तक सोता है, 7-8 घंटे हटा दें, 16-17 घंटे रखें। इसमें से हम कितने घंटे हम देते हैं मकसद में, जिसके लिए हमें दुनिया में भेजा गया, लियाबुदून, लियारिफून, लियाबुदून, कितनी देर हम देते हैं? हम कितनी देर नमाज़ पढ़ते हैं? 16 घंटे में शायद 1-1.5 घंटे का वक्त गुजरता हो, 8 घंटे भी हो तो भी बराबर है, 8 घंटे से ज़्यादा हो तो आदमी कह सकता है। इसका क्या तरीक़ा है? अब ये तो बहुत मुश्किल है कि आदमी 8 घंटे इबादत में दे। 8 घंटे की इबादत क्या है? ये मुस्तकिल तकवा का अहतमाम, सुन्नतों का अहतमाम, दुआओं का अहतमाम। इसमें कौन सा वक्त खर्च होता है? गाड़ी में बैठे दुआ पढ़ ली, इसमें अलग से वक्त निकालना पड़ता है? ये स्टार्ट होने से पहले सारी दुआ देख के पढ़नी पड़े, गाड़ी स्टार्ट है दुआ पढ़ दें और आगे जाएं। इसी तरह और भी जितने काम हैं सब दुआ में और तकवा में कोई वक्त नहीं लगता। इबादत में वक्त लगता है, इबादत मुस्बता में वक्त लगता है, लेकिन इबादत मनफिया गुनाह से बचने में कोई वक्त नहीं लगता, बल्कि और वक्त बचता है। तो जैसे कोई नेट नहीं देख रहा है, फेसबुक यूज़ नहीं कर रहा है, टीवी और ड्रामा नहीं देख रहा है, तो वक्त बचा या नहीं बचा? वक्त बच रहा है यार, हम उल्टा वक्त लगा रहे हैं उस कामों में, मासी में, परेशानी भी, जिल्लत भी, मशक्क़त भी, मगर तकवा से रहने में कोई मेहनत नहीं होती। तकवा से रहना क्या है? हमारे शेख के भी शेख, हमारे दादा शेख यानी हजरत मौलाना शाह अब्दुल गनी फूलपुरी रहमतुल्लाह ताला, जिनको 12 मरतबा नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ियारत ख्वाब में हुई थी, वो फरमाते थे कि अल्लाह ताला का कारखाना अजीब है, इसमें ज़्यादा कदर उसकी है जो काम ना करे। काम ना करो और मजदूरी ले लो, गुनाह के काम ना करो, बुरे काम ना करो, बदनिगाही ना करो, बदज़बानी ना करो, ज़बान मत चलाओ, उसकी अपनी चीज़ को खुद महफूज रखो, हम तुम्हें ज़्यादा सवाब देंगे। खुद महफूज रखो, आँखें इधर उधर इस्तेमाल ना करो, हम तुम्हें सवाब देंगे। फरमाए कि यहाँ से कोई चला जाए टावर तक, सुरजानी से टावर तक, लांडी से टावर तक, और वहाँ तक कोई सिग्नल ना तोड़े। बहुत आज ही मैंने देखा सिग्नल पे मुसलमान हैं, ये सिग्नल तोड़े हुए चले जा रहे हैं, देखते सामने गाड़ी नहीं, ये गुनाह है, ये समझ लें। शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी साहब फरमाते कि सिग्नल तोड़ना ये गुनाह है, क्योंकि पाकिस्तान के जायज़ कवानीन की पाबंदी करना हर मुल्क के कानून की उस मुल्क के बाशिंदे पर ज़रूरी है, क्योंकि वो कवानीन उनके फ़ायदे के लिए बनाए जाते हैं। अब इस्तेसनाई सूरत से हादसात होते हैं, इतना ख़तरनाक हादसा हुआ, एक दोस्त ने बताया, रात को जा रहे थे और सिग्नल का कि अभी कहाँ सिग्नल, उधर से अचानक गाड़ी आई, इतना ख़तरनाक एक्सीडेंट हुआ कि बस जान बच गई किसी तरह, बहुत अरसे तक बिस्तर पर रहे। क्यों होता है? इसी वजह से होता है कि आदमी ये समझता है कि हम और कोई थोड़ी आएगा, अभी तो सिग्नल भी खुला है, रात देर हो रही है, اور ابھی دن میں میں 11 بجے تھا اس جگہ پر، 11:15 بجے، جبکہ سگنل توڑ کے لوگ جا رہے ہیں۔ دوسرا اب آ کے اس نے آ کے لعنت بھی دکھائی اور نصیحت بھی کی، پہلے لعنت پھر نصیحت۔ کیا ہے، لوگوں کو برا لگتا ہے درد، وہ ادھر سے آیا تو وہ آگے بڑھ چکا تھا، غلط ہے نا۔ تو یہ کیا ہے، یہ دین یہ سکھاتا ہے کہ ڈسپلن کا خیال رکھیں، جو ملک کے قوانین ہیں اس کو نہ توڑیں، اس کو نہ توڑیں۔ تو قوانین کیوں بنائے جاتے ہیں؟ تاکہ ہمارا فائدہ ہو۔ یہ قوانین کیوں بنائے گئے ہیں؟ تاکہ ہم سب کا فائدہ ہو۔ تو جو اللہ کے قانون کو توڑے گا وہ بھی گناہگار ہے، اور جو ملک کے صحیح قوانین کو، جو شریعت کے حدود میں ہیں، جو شریعت سے باہر ہیں، اس کو نہیں کہا جا رہا۔ شریعت سے باہر اول تو بہت کم قوانین ہوں گے، لیکن جو ہیں وہ شریعت کی حدود میں، وہ ہمارے فائدے کے لیے، اس کو بھی فالو کرنا چاہیے، اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ بھائی یہ قوانین کیوں اب الٹے چلے آ رہے ہیں، یو ٹرن میں اب اچانک اس نے دیکھا نہیں، مار دیا۔ اب کس کا قصور ہے؟ الٹے آنے والے کا قصور ہے، سگنل توڑنے والے کا قصور؟ قصور تو اس کا ہے، چوٹ تو دونوں کو لگے گی، بعض دفعہ اس سے زیادہ چوٹ اس کو لگتی ہے جو بے قصور ہوتا ہے۔ کس کا کیا، کس کو گناہ ملے؟ گناہ بھی ملے گا اس پر، اس پر گناہ ملے گا، کیونکہ اس نے قانون بھی توڑا اور دوسرے کو نقصان بھی پہنچایا۔ تو اس لیے یہ تمام قوانین اس لیے بنائے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت مولانا نذیر احمد صاحب نے یہ بات فرمائی، فیصل آباد کے بڑے شیخ الحدیث تھے، میں ان کے بیان میں موجود تھا، کہ آپ یہاں سے ٹاور تک چلے جائیں، کوئی سگنل نہ توڑیں، پھر وہاں کے جا کے بڑے جو کوئی ہوتا ہے سفید کپڑے پہنے ہوئے، بہت بڑی سی موٹر سائیکل میں بھاری سی، اسے کہیں ہمیں انعام دو، ہم نے کوئی سگنل نہیں توڑا، انعام دے گا، بلکہ اور کچھ نہ کچھ نکلوا لے گا، تم نے فلاں کام، تمہاری بائک میں فلاں چیز نہیں ہے، تو کیوں؟ وہ انعام نہیں دے گا۔ دنیا والے کام نہ کرنے پہ انعام نہیں دیتے۔ کوئی جرم نہ کرو، جا کے عدالت سے کہو کہ میں 65 سال کا ہو رہا ہوں، ریٹائر ہوں، ابھی تک میں نے کوئی جرم نہیں کیا، مجھے کوئی تمغہ بھی تو دیجیے، آپ تمغہ ملے گا، کوئی اور جرم ڈال دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے قانون ایسا ہے کہ جرم نہ کرو اور ہم سے نیکی لے لو، تقوی سے رہو، ہماری دوستی تقوی پر ہے۔ اور تقوی کسی عمل کا نام نہیں ہے، تقوی گناہ سے بچنے کا نام ہے۔ جو جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، بد نگاہی نہ کرے، یہ تقوی والا ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں زیادہ تسبیح اور نفل پڑھنے والا تقوی والا ہے، یہ زاہد اور عابد تو ہے، عابد ہے، عبادت گزار ہے، تقوی والا وہ ہے جو گناہ سے بچتا ہے، جو گناہ سے بچتا ہے۔ تو تقوی ایسی چیز ہے جس میں وقت بھی صرف نہیں ہوتا، بلکہ بغیر وقت صرف ہوئے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ 16-17 گھنٹے جو ہمارے جاگتے ہوئے گزرتے ہیں، یہ کیسے عبادت میں گزر سکتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہر وقت تسبیح چلتی رہے، ہر وقت جو آدمی کوئی نہ کوئی دین کا کام کرتا رہے۔ انسان ہے، اس کے ساتھ معاش یہ اللہ تعالیٰ نے لگایا ہے، جان کے لگایا ہے، اور اس کی محبت بھی ڈالی ہے، انہ لحب الخیر لشدید، مال کی محبت اس کے اندر بہت زیادہ ہے۔ اگر یہ محبت نہ ڈالتے تو ہر آدمی اپنے گھر میں سوتا رہتا، پھر یہ معاش کیسے چلتا، پھر کھاتا کہاں سے، پھر لوٹا ماری کرتا۔ لہذا یہ معاش کی محبت ڈالی ہے، تو معاش بھی کمانا ہے، لیکن اس کے کیسے کمانا ہے، اب یہ حلال و حرام کو مفتی صاحب سے پوچھنا پڑے گا، میرا کام جائز بھی ہے یا نہیں، میں اتنے بل اتنے دن روکتا ہوں، میں یہ کام کرتا ہوں، اس میں میرے لیے اب یہ اور ثواب بن جائے گا، اب یہ ثواب بن جائے، اسی کام کو آگے پیچھے کر کے روک کے تھوڑا سا نقصان پہنچا کے نماز میں آتا ہے، جماعت سے نماز پڑھتا، جھوٹ نہیں بولتا، دو نمبر کام نہیں کرتا، یہ سب وہی مال میں برکت ہو رہی ہے۔ اور یہ مال کمانا بھی الکاسب حبیب اللہ، اب بتائیے 8 گھنٹے جو نوکری کر رہا ہے، اگر یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے اور صحیح پیٹ پالنے کے لیے، جھوٹ نہیں بول رہا ہے سب کام، تو یہ بھی ثواب کما رہا ہے، نفل کا ثواب ملے گا اس۔ الکاسب محنت کرنے والا، کاسب کہتے ہیں کسب، کہتے ہیں محنت کرنے، الکاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا، محنت کر کے کمانے والا اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے، اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ تو دیکھیے اللہ کی محبوبیت کن کن کاموں پہ مل رہی ہے، صرف اس کے لیے ہر وقت نماز میں رہنا نہیں۔ اب بہت سے لوگ نماز میں، جیسے میں نے بتایا کہ فیکٹریوں میں، مل فیکٹریوں میں، کارخانوں میں نمازی پہلے سے چلے جاتے ہیں، ابھی اذان ہوئی چلے گئے، कभी घर में ऐसे नहीं जाते, घर में जब जाते हैं जो जमात खड़ी हो चुकी होती, एक दो रकत निकल जाए कोई बात नहीं, अभी बहुत सारे काम हैं, और वहाँ पहले से जाते हैं। तो ये भी वही वसूली है, और ये भी वही चीज़ है कि हम क्योंकि सेठ का काम कर रहे हैं इसलिए हम पहले से पहुँच जाते हैं, देर तक नफिल पढ़ रहे हैं, जबकि अब यहाँ पर हमें जाना चाहिए 5-7 मिनट पहले, ठीक है, वुजू वगैरह करके तैयार रहे, फिर जैसी 6 मिनट बाकी हों चला जाए तो 4 सुन्नतें मौक्कदा मिल जाएगी जोहर की। फैक्ट्री में 4 सुन्नत गैर मौक्कदा पढ़ना भी ज़रूरी नहीं, कभी मौका मिल गया और आ गए जल्दी 4-5 मिनट में पढ़ लिया, लेकिन वहाँ पे अजान के साथ नहीं आना है, लेकिन घर से कोशिश करनी है कि अजान के साथ तैयारी करें, क्योंकि ये हमारा अपना वक्त है, और जो मिल फैक्ट्री में हमने दिया ये हमारा अपना वक्त नहीं है, उसमें से वो जो फ़र्ज का वक्त दे रहा है उसको देना भी चाहिए, और हमें फख्र इतना ही वक्त लेना चाहिए कि जिसमें उसका काम भी सही चलता रहे। हाँ, किसी का अपना काम है, अपनी दुकान है, तो अजान के साथ बंद कर दे, बरकत होगी इंशाल्लाह, अजान के साथ बंद कर दे तो बरकत होगी। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे, अभी कल उनका जिक्र आया था, सुबह फजैल इब्न अयास के साथ, ये लोग सब साथी थे, सुल्तान इब्राहिम इब्न अदम, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक, फजैल इब्न अयास, ये सब बड़े बड़े इबादत गुजार, और अब्दुल्लाह इब्न मुबारक का इम्तियाज़ ये था कि उन सबसे बड़े आलिम भी थे और बहुत बड़े मुहद्दिस और मुजाहिद भी थे। तो उनका इंतकाल हो गया, उनके साथ एक लोहार रहता था, उनके पड़ोस में एक लोहार रहता था, और लोहार जाहिर सी बात है एक गैर पढ़ा लिखा आदमी होता है आमतौर पर, जो कि बस काम वाम करता था, तो वो उसका इंतकाल हो गया कुछ अरसे बाद। तो किसी आबिद जाहिद आदमी ने, नेक आदमी ने ख्वाब में देखा कि जन्नत में दोनों को साथ देखा, कि यहाँ भी पड़ोसी थे वहाँ भी पड़ोसी। तो उसने पूछा किसी आलिम से कि ये क्या वजह है, तो उन्होंने कहा कि भाई कोई अमल ऐसा होगा जिसकी वजह से उनको अल्लाह ताला ने वहाँ पहुँचा दिया। एक यानी आम सा लोहार आदमी नमाजी है, लेकिन लोहार आदमी एक आदमी मुहद्दिस है, मुजाहिद है, उनके बहुत मुरीदीन थे अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह ताला, तो उसको फिर और ज़्यादा वो लगी कि तलब हुई कि इसको पूछें क्या अमल करता था, हम भी करें। तो उसके घर वालों से पूछा क्या ख़ास अमाल थे, उसने कहा कि कोई रात भर तहज्जुद नहीं पढ़ते थे, कोई ऐसे ख़ास अमाल नवाफिल नहीं थे, दो बातें मुझे पता हैं, एक ये कि जैसे ही नमाज के लिए अजान हो जाती थी, लोहार थे ना तो लोहे पे हथौड़ा मारते थे, अजान हो गई तो हथौड़ा लोहे पे नहीं मारेंगे, पीछे गिरा देंगे, अल्लाह ने बुला लिया अब काम बाद में होगा, अपना काम था अब काम बाद में होगा, अल्लाह ताला ने बुला लिया, इतनी सी बात। दूसरी बात क्या कि कभी कभी ये कहते थे कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक को अल्लाह ताला ने क्या मकाम दिया है, कितना अल्लाह ताला इनसे दीन का काम ले रहे हैं, अगर मेरे पास भी वक्त होता ना तो मैं भी इसी तरह दीन के लिए काम करता, ये रश्क, इस रश्क पे अल्लाह ताला ने वहाँ तक पहुँचा, एक तरफ रश्क और एक तरफ फ़राइज़ में इतनी इतनी तंदेही कि बस अजान हुई और फिर हालांकि हराम थोड़ी है, कर लो भाई 5 मिनट और काम कर लो, 20 मिनट बाद अजान नमाज होगी, चलो 10 मिनट पहले तैयारी शुरू करना, लेकिन ये आला दर्जा है, तो अल्लाह ताला को इतना पसंद आया कि उस दर्जे तक अल्लाह ताला ने पहुंचा दिया। इसलिए कम से कम जितना हम कर रहे हैं वो सही करने लगे, भाई इंशाल्लाह ये सारे काम सही हो यार, कोई मौलवी नहीं कह रहा, कोई सूफी नहीं कहता कि आप अभी बैठे हैं तो मगरिब तक यहीं बैठे, जो मस्जिद से जाए और फिर उसका दिल अटका रहे और लटका रहे, कल्बुहु मुअल्लकुम बिल मसाजिद, कि हमें दोबारा मस्जिद में आना है, ये शख्स भी अर्श के साए में होगा, दिल लटका रहे कि इतने बजे गुरूब है, गुरूब के वक्त आ जाए, अजान का इंतज़ार ना करे, अजान हो के जमात खड़ी होते होते जो है जमात निकलने लगती, गुरूब के शख्स हर मस्जिद में 2-4-5 मिनट बाद अजान होती है, तो गुरूब को एम बनाए, जब 2-4 मिनट पहले पहुँचेंगे तो पहली सफ भी मिलेगी और अजान का जवाब भी देने की तौफीक होगी, दुआ पढ़ने की भी तौफीक होगी, अल्लाह ताला हमें एहतमाम की तौफीक अता फरमाए, अल्हम्दुलिल्लाह।